ओम शांति। विभिन्न पथ पर फूल बिखेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। संसार में कई सारे शास्त्र लिखे हैं, कई सारी किताबें हैं, कई सारे सिद्धांत है, जिसमें अध्यात्म, भगवान, जीव जगत, ईश्वर की चर्चा है। परंतु बाबा ने आकर इस संसार का गुह्यतम सत्य केवल इन दो शब्दों में व्यक्त किया है, मेरा बाबा। ऐसे ही एक सुबह किसी राज्य में सुबह सुबह आकाशवाणी हुई, शाम से लेकर तो मध्य रात्रि तक जिसके पास जो भी दुख है वो एक गठरी में बांधे और गांव के बाहर उसे छोड़ा है। छोड़ने का ये कार्य आधी रात तक पूरा हो जाना चाहिए और फिर दूसरे दिन सुबह तक जिसे जो सुख चाहिए वो उसी गठरी में बांध कर ले आए। कल्प वृक्ष का अवतरण इस धरा पर, ऐसी यह घोषणा, ऐसी आकाशवाणी सुबह से लेकर तो शाम तक बार बार हुई। कहानी झूठी है परंतु कभी कभी झूठी कहानियां ही बहुत कुछ सिखा देती है। ऐसी ही घोषणा दिन भर होती रही, शाम हो गई। सभी लोगों ने जितने उनके दुख थे, जितने हो सकते हैं दुख, वो सभी दुख अपनी अपनी गठरी में बांधे और पहुंच गए गांव के बाहर। कोई दुख छूट ना जाए, कौन चाहता है दुखों को। और सभी ने दुखों को फेंक दिया और बांधने लगे किसको, सुखों को। कोई भी सुख अनबंधा न रह जाए, तेजी से त्वरा से सुख बांधने लगे और अपनी अपनी गठरियों में सुख भर दिया। गांव में एक फकीर था, वो नहीं गया। लोगों ने बहुत समझाया, यहां तक कि सम्राट भी इस कारवा में शामिल था, परंतु वो नहीं गया। सुबह जब हुई और सब लौटे तो आश्चर्य देखा कि जो घोषणा हुई थी, जो आकाशवाणी हुई थी, वो सत्य थी। सभी की झोपड़ियां और सभी के घर थे वो महल बन चुके थे और जिसने जो जो चाहा था, जो जो मांगा था, वो सभी सबने पा लिया था। परंतु इस आश्चर्य के साथ एक दूसरा महाआश्चर्य घटित हुआ। सुखों की चाह से सब गए थे, पुराना सब खत्म करने की चाह से और नया सब मिल जाए इस चाह से, परंतु जब लौट आए पहले तो खुश हुए और फिर बाद में दुखी हुए। क्यों? दूसरे का सुख, दूसरे का महल थोड़ा सा ज्यादा सुंदर था, दूसरे के घर में जेवर थोड़े ज्यादा थे, फिर भी लोग उस फकीर के पास पहुंचे और कहा, कैसे तुम मूर्ख हो, अब तो सीखो, अब तो समझ जाओ, देखो हम क्या से क्या बन गए। फकीर ने कहा, तुम अब भी वही हो जो थे। बाहर से कुछ भी आरोपित नहीं किया जा सकता है चेतना पर। जो कुछ सुख है वो अंतर है, वो अंदर है, और मेरा सुख मेरे अंदर है। मुझे बाहर जाने की और उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सभी लोग कहीं ना कहीं सिर दुखी हो गए थे। वही ईर्ष्या, वही द्वेष, वही नफरत की भावना, वही बदले की भावना, वही लालच, वही लोभ, वही काम, वही क्रोध, वही चिड़चिड़ापन, वही सब कुछ। बदला तो कुछ भी नहीं। फकीर से कहा, अब तो सीखो। फकीर ने कहा, अब तो सीखो। युग बदल रहा है, सदी बदल रही है, दिन बदल रहे हैं, वर्ष बदल रहे हैं, सब कुछ बाहर का बदल रहा है। परंतु यदि हम वही के वही रहे तो उन नगरवासियों की सी अवस्था हमारी है। बाहर की जो दौड़ है सुखों की, वो कभी हमें आंतरिक उस सुख तक नहीं पहुंचा सकती है, क्योंकि यह सुख अतीन्द्रिय सुखमयी अवस्था, ये जो है, ये अवस्था बाहर के कोई साधन से प्राप्त नहीं हो सकती है। बाहर का कोई वैभव, बाहर का कोई व्यक्ति, बाहर की कोई स्थिति परिस्थिति, बाहर की कोई वस्तु पदार्थ इस अवस्था तक हमें नहीं पहुंचा सकता। तो कल बाबा आए थे और ये हम सभी का भाग्य है कि हम उस सभा में थे। क्यों भाग्य है? क्या था उस सभा में ऐसा? उस सभा में क्या था? सब कुछ था। जो चाहिए वो सब कुछ है। खुशी चाहिए तो खुशी है, रमत गमत, प्रेम आनंद खुशी सब कुछ था। और क्या था उस सभा में? बाबा था। सौदा अच्छा कर लिया, अभी अभी संडे में था ना, वस्तु के दाता को ही ले लिया है। अच्छे सौदागर हो। उस सभा में एक सभा थी और एक जादूगर। उस सभा में एक दिलाराम था और कई सारे दिल थे और कई सारे दिल वाले थे। तो सारे कल्प में ऐसी कभी सभा होती नहीं है, और उस सभा में हम थे और उस सभा को हमने देखा और उस सभा की हमने अनुभव अनुभूति की। ये हमारा भाग्य है। तो अभी फिर से आधे मिनट के लिए उसी सभा को अपनी आंखों के सामने इमर्ज करेंगे। इस भूमंडल पर वह जगत नियंता विराजमान है और उसके सामने परमात्म प्रेम के अधिकारी बच्चे, परमात्म पालना के अधिकारी बच्चे बैठे हैं। और वो बच्चे क्या कर रहे हैं? कल की मुरली की दूसरी लाइन क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? दृष्टि ले रहे हैं उसकी, प्रेम की दृष्टि, स्नेह की दृष्टि, शक्तिशाली दृष्टि, पावरफुल दृष्टि। तो सभी इस दृश्य को इमर्ज करेंगे। प्रभु मिलन की यह सभा यह परमात्मा महफिल और मैं इस संसार की सबसे अधिक भाग्यवान आत्मा प्रभु पालना की अधिकारी अपनी इन आंखों से देख रहा हूं यह विशाल सभा भगवान की दृष्टि चहुओं घूम रही है सुख का सागर शांति का सागर प्रेम का सागर आनंद का सागर इसी प्रेम के सागर में लवलीन मैं तपस्वी मूर्त हूं जैसे ही उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ रही है बीती बातें बीती चलन व्यर्थ बातें व्यर्थ चाल चलन समाप्त हो रही है उसकी ये शक्तिशाली दृष्टि मुझ आत्मा पर पड़ रही है नए वर्ष के लिए नई सदी के लिए नए युग के लिए मैं आत्मा पुनः एक नवीन ऊर्जा से भर रही एक अभिनव शक्ति मेरा उमंग मेरा उल्लास पुनः लौट आया है बाबा मुझे देख रहा है और इसी दृश्य को अपने दिल में कैद कर मैं आत्मा पुनः इस देह के भान में वापस आती हूं ओम शांति दिल में मेरा बाबा कैसे समा जाए कोई निकाल ही ना सके और किसी ने निकाला तो उसकी खैर नहीं कौन निकालता है, कौन सी वो बातें हैं, कौन सी वो परिस्थितियां हैं, कौन सी वो वस्तु है जो भगवान को हमारे हृदय से निकाल दे, ऐसा कुछ है? नहीं है, यह है, है। अपने आप को देखना है, अपनी चेकिंग आप पे ही करो, बाबा ने कहा है। दूसरे की चेकिंग करना आसान है, खुद की चेकिंग करना कठिन है, आज सुबह कहा। अपनी चेकिंग आप ही करो। मेरी दिनचर्या में ऐसी वो कौन सी बातें हैं जो भगवान को विस्मृत कर देती है, ऐसे मेरे मुख से कौन से बोल निकलते हैं कि जो बोलते ही बाबा से दूरी हो जाती है, ऐसे ऐसी वो कौन सी चलन है, चाल चलन दृष्टि वृत्ति स्मृति चेहरा पोज, कई सारे शब्द सुबह की मुरली में आए हैं, ऐसी वो कौन सी बातें हैं जो मुझे अलौकिकता से दूर कर देती है। इस पर सभी चिंतन करें। तो मेरा बाबा इसको क्या कर दो, समा दो। विधि क्या है समाने की, कैसे समाएंगे उसको अंदर? बाबा ने कहा समाया हुआ है तुम्हारे दिल से, एक ही बोल है तुम्हारे दिल में, एक ही आवाज है तुम्हारे दिल की, एक ही कविता है तुम्हारे दिल में, एक ही गीत है। तुम सदा डांस कर रहे हो, खुशी की डांस, याद की खुशी की याद। तो ऐसा हम क्या करें कि जो उसकी याद दिल में समा जाए? सभी बोलेंगे क्या किया जाए। बाबा ने मुरली में आज की कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की बात की है। माइंड प्लेट, मन की प्लेट पर, मन की प्लेट, मन की स्लेट, मन का पेपर। अगर इसमें कुछ भी निगेटिव है तो मिटा नहीं सकते। पहला काम क्या करना होगा, निगेटिव को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, फिर समा सकते हो। समाने की शक्ति से फिर मिटा सकोगे। तो मन की ये जो प्लेट है, मन की ये जो स्लेट है, इस पर यदि कुछ और लिखा है तो नया नहीं लिखा जा सकता, स्पष्ट नहीं होगा। हमारे मन की प्लेट पर क्या लिखा है, व्यक्ति वस्तु वैभव साधन, ये लिखा है या और कुछ लिखा है, क्या लिखा है? तो बाबा ने होमवर्क दिया है एक, इसको मन में समा दो। ऐसा समा दो कि कोई छिपा दो, कि कोई निकाल न सके। केवल नारे लगाने से होगा, मेरा बाबा मेरा बाबा? फिर क्या करना होगा, कुछ और करना होगा। केवल नारे लगाने से तो नहीं होगा ना, ये मुख का सौदा तो नहीं है ना, ये दिल का सौदा है। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि बाबा से प्यार कैसे बढ़ाए। कई सारे लोग भाई बहने ये प्रश्न पूछते हैं, क्या हम करें कि बाबा से हमारा प्यार बढ़ जाए, वो मीरा की जैसी हमारी स्थिति क्यों नहीं हो जाती, जो दिन रात लगन में मगन रहती थी। उन भक्तों की स्थिति हमसे श्रेष्ठ क्यों थी, उन्हें परिचय नहीं था फिर भी इतने मगन थे, दुनिया के भान से दुनिया की बातों से परे रहते थे, हम क्यों नहीं रह पाते? हमारे पास परमात्मा संपूर्ण परिचय है, भगवान स्वयं बैठ के सिखाता है पढ़ाता है, फिर भी। उसमें चार बातें हैं, यदि भगवान से प्यार बढ़ाना है तो इन चारों से प्यार बढ़ाना होगा, तब कहा जाएगा कि भगवान से प्यार बढ़ा। सबसे पहले तो उसके महावाक्य, कल जो मुरली चली थी वो 10 बार किसने पढ़ी वो हाथ खड़ा करो। अव्यक्तवाणी शाम की 5 बार जिसने पढ़ी वो हाथ खड़ा करो। 5 बार, 5 बार में भी कोई नहीं, 2 बार जिसने पढ़ी वो हाथ खड़ा करो। 2 बार, 2 बार में काफी है। 1 बार जिसने एक भी बार नहीं पढ़ी, जो बचे हुए हैं वो सब है। भगवान के महावाक्यों से प्यार अर्थात ही उससे प्यार, उसका एक एक शब्द जो है उसके मुखारविंद से निकलने वाला एक एक शब्द वाक्य नहीं महावाक्य है। एक वाक्य को इधर रखो महावाक्यों के और सारे शास्त्रों को एक तरफ रखो, ये शक्तिशाली है। तो यदि भगवान से प्यार बढ़ाना है तो उसके महावाक्यों को पढ़ना, समझना, धारण करना। इस मुरली में, आज सुबह की मुरली में ऐसी कुछ 5 बातें बाबा ने कही है। एक जगह कहा है सुनना, पहली स्टेप है। हम इसको 5 सोपान, 5 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। पहला है सुनना या सुनाना, ये तो एकदम प्रिलिमिनरी पहला। उसके आगे है जानना, सुना फिर जाना। थर्ड है समझना, ये उसके आगे की स्टेज है। पहला सुन लिया, सुबह हम गए मुरली सुने आ गए, कल हम नीचे गए बाबा के सामने बैठे मुरली सुनी और आ गए। सुनना पहला। दूसरा उसको जानने की कोशिश, क्या वो बोल रहा है, टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट क्या है, किस परिवेश में, किस कंटेक्स्ट में, किस संदर्भ में वो बोल रहा है, उसको समझना जानना। उसके आगे की स्टेज है समझना, जो उसने कहा वो जाना और फिर उसको समझा। परंतु आज की मुरली में बाबा ने कहा उससे भी आगे एक स्टेज है, वो कौन सी, अनुभवी मूर्त बनना। सबका आधार है अनुभवी मूर्त, फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन। सबका आधार क्या है, अनुभवी मूर्त। और 5वीं अवस्था कौन सी है फिर, स्वरूप बनना। ज्ञान की किसी भी पॉइंट्स में ये 5 चीजें अप्लाई करनी है। कोई भी शक्ति, सुनना, जानना, समझना, अनुभव करना और फिर स्वरूप बनना। कोई भी गुण, कोई भी महावाक्य, कोई भी ज्ञान का पॉइंट, इन 5 चीजों से वो जाना चाहिए। तो बाबा के महावाक्यों से प्यार, एक दूसरा दृश्य स्वयं के आंखों के सामने इमर्ज करना है। हम सूक्ष्म वतन में हैं, बाबा हमारे सामने हैं और एक बहुत बड़ी स्क्रीन वहां लगी हुई है। मन की वो प्लेट है, मन की वो स्लेट है और पिछले 1 साल में हमने जो कुछ किया वो उसमें दिख रहा है। हर एक मास, हर एक दिन, हर एक हफ्ता चार्ट बने हुए हैं 12 मास के। एक एक दिन हमने क्या क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, वो सब कुछ एक नजर उस पर दौड़ाना है अगले 3 मिनट में। और फिर बाबा के साथ साथ हम खुद उस स्क्रीन को ऐसी शक्तिशाली दृष्टि दे कि सब कुछ क्लीन और क्लियर हो जाए और उस क्लीन और क्लियर स्लेट को लेकर वापस इस तन में आ जाना। दूसरा है मधुबन से प्यार। मधुबन के वर कोई भौगोलिक व्यवस्था नहीं है, वो बहुत सीमित परिभाषा होगी उसकी। मधुबन के कण कण में इस सृष्टि के आदि पिता की स्मृतियां है, और बाबा ने लक्ष्य दिया है उसके समान बनने का। उस मधुबन से प्यार, तीसरा इस परिवार से प्यार, और चौथा इस यज्ञ से प्यार। यदि भगवान से प्यार बढ़ाना है, यदि बाबा से प्यार बढ़ाना है, यदि मेरा बाबा दिल में छप जाए और कोई निकाल न सके, तो इन चारों ही चीजों से हमारा प्यार बढ़ जाए या हम बढ़ाए, चारों ही के प्रति हमारा समर्पण भाव। आज की मुरली में बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही है, संकल्प जो है वो कैसा है, बीज के जैसा है, और उसे क्या चाहिए, स्मृति की धूप और पानी चाहिए। आज नए वर्ष का पहला दिन है, तो जितना पावरफुल हम संकल्प करेंगे, संकल्प तो करना ही है, परंतु उस संकल्प को हर दिन रिवाइज करना है, उस संकल्प को स्मृति की धूप और स्मृति का पानी चाहिए। बाबा ने कहा है रिवाइज करो, बाप से तुम्हारा क्या वायदा है। बार 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 अमृत वेला, अमृत वेले के बाद रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करना, क्यों आए थे यहां, क्या बनने आए थे, क्या करने आए थे, क्या कर रहे हैं, ये सारी बातों को रिवाइव करना। आज की मुरली में जो अव्यक्त इशारों का फर्स्ट पॉइंट दिया है, ऐसे पूरे ही मास 31 दिए जाएंगे, उस एक एक पर काम करना है रोज। जैसे आज दिया था तपस्वी मूर्त, तो आज सुबह से लेके तो शाम तक, रात तक बार बार इसको स्मृति में लाना है कि मैं कौन हूं। मैं तपस्वी मूर्त हूं, मेरा लक्ष्य तपस्या है। जब तक ये तपस्या, ये साधना नहीं की जाएगी, हमारा पुरुषार्थ बहुत ढीला रहेगा। तो बाबा ने कहा है, संकल्प बीज है। कौन सा संकल्प उसने कहा है? मैं बाप समान फरिश्ता हूं, पुराने रिश्ते पुराने संस्कारों से मेरा कोई रिश्ता नहीं। अपने अनादि आदि संस्कारों को क्या करो? इमर्ज करो। ये तपस्या है, ये साधना है, और इसकी प्रैक्टिस करते रहो। कल की मुरली क्या कहो बाबा ने? प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस और अटेंशन दो शब्द कहे। बार बार अटेंशन, धीरे धीरे प्रैक्टिस। बार बार अटेंशन, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते रहो। यदि हम जब तक अभ्यास नहीं करते, और यदि हम दूसरों को कहते हैं वो करो, तो क्या होगा? यूपी ग्रुप से मुलाकात, क्या कहा? तो शर्म आएगी। दूसरों को हम कह रहे हैं तुम्हारा अमृत वेला शक्तिशाली होना चाहिए, और हमें ही नींद है, तो क्या कहेंगे? दूसरों को हम कह रहे हैं मुरली से बहुत प्यार होना चाहिए, परंतु मुरली कब आई और कब गई पता नहीं चला। टीचर ऐसे पढ़ाता है कि ये टीचर भी बड़ा वंडरफुल है। अभी अभी बाबा ने पिछले सीजन में कहा था कि क्या होता है, छपाई हो जाती है। तो संकल्प लेना, बार बार उसे याद करना। पहले तो ये डिसाइड करना है मुझे क्या संकल्प करना है। अपने आप को देखना, कौन सा दुख है, कौन सी अशांति है कल की मुरली, और फिर उसे समाप्त करो। क्या संकल्प लेना है? सबसे पहली बात तो है कौन से संकल्प लेना है। आज सारे दिन भर नहीं लिए होंगे तो आज रात में या कल सुबह अमृत वेले लेना कि ये मुझे करना है। आज की मुरली में कहा डेट फिक्स कर दो उसकी, ये मुझे करना है। फिर इसके लिए कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। व्रत जैसा ले लेना उसका, तो संकल्प का बीज उसको बार बार फिर रिवाइज करना। ये एक काम आज सुबह की मुरली में बाबा ने दिया है। कल बाबा ने कहा था अटेंशन और प्रैक्टिस। किस चीज की प्रैक्टिस करनी है? अतीन्द्रिय सुखमयी अवस्था की। किस चीज की प्रैक्टिस करनी है? अतीन्द्रिय सुखमयी अवस्था। यह आत्माभिमानी स्थिति है, यह अशरीरी अवस्था है, क्योंकि अतीन्द्रिय कहा बाबा ने, इंद्रिय नहीं। अतीन्द्रिय सुखमय अवस्था ऊंची अवस्था है। कब करना, कितना घंटा करना है, कितना देर करना है? मुरली में बाबा ने एक जगह कहा है, एक सेकंड में ओम शांति स्वरूप में स्थित हो जाओ, एक सेकंड में मन मना भाव, एक सेकंड में याद की यात्रा। कहीं कहा आधा घंटा, कहीं कहा एक घंटा, कहीं कहा सवा घंटा, पौना घंटा, पौना या सवा, सवा घंटा। अगर ये सब हो जाए तो किसकी लाइन में आ जाएंगे? योगेश्वर की लाइन में आ जाएंगे। तो मुरली से सबसे पावरफुल जो होमवर्क है वो है कि मुझे कहां आना है? योगेश्वर की लाइन में, योगेश्वर की पंक्ति में आके बैठ जाना है। एक रस अवस्था, योगेश्वर की लाइन, अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति। इस स्थिति को, ये स्थिति क्या है, जो लिख सकते हैं इसको इस तरह विभाजित करें और लिखें। प्रश्न बनाएं कि अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति क्या है। अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति बनाने के लिए क्या करें, कैसे इसका अभ्यास करें, कैसी प्रैक्टिस करें, कौन से ट्रायल करें, और मेरी जैसी दिनचर्या है उस दिनचर्या में दिन भर में ये कहां कहां संभव है। ऐसा ना हो कि केवल सुबह की और सीधा शाम, दिन भर में क्या हुआ पता ही नहीं। एक बेहोशी, एक मूर्छा सीधा शाम को ही जागाता है, फिर पता चलता है बाबा भी है, दिन भर में विस्मृति। अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति क्या है, एकर स्थिति क्या है, कैसे मैं बनाऊं, इस स्थिति बनाने में कौन कौन सी बाधा है और इस बाधा को मैं कैसे मिटाऊं, ये सभी स्वयं को होमवर्क देना है। जिन्हें योगेश्वर बनना है, योगी बनना है, अगर ऐसी स्थिति नहीं तो उसको क्या कहेंगे, योगी कहेंगे? बाबा ने प्रश्न पूछा है। सबसे ज्यादा काम तो इस पर करना है, कौन सी बाधाएं हैं। दो शक्तियों की चर्चा आज बाबा ने की है, समाने की शक्ति और मिटाने की शक्ति। क्योंकि मन में, मन की स्लेट में, सबकॉन्शियस में इतना कुछ भरा है, केवल इस जन्म का नहीं पिछले जन्म का भी, कि जो बीच बीच में निकल कर बाहर आता है, फिर वो जो चार बातें बताई बाबा ने, शुभ 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 शुभ, वो नहीं रहती। सुखमयी अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति बनाना है तो सबकॉन्शियस को क्लियर करना होगा। ये एक प्रश्न जो कहा, डिफिकल्टीज, कौन कौन सी कठिनाई है स्थिति बनाने में। कठिनाई जो है उसका स्रोत अवचेतन मन तक है, कहीं ना कहीं बहुत गहरे संस्कार है। विचार जो है हमारी रचना है, हम विचार नहीं है, विचार हमारी रचना है। और विचार कहां से उत्पन्न होते हैं? विचार सबकॉन्शियस माइंड से निकलते हैं, वो जो डीप रूटेड संस्कार है, गहराई में, अंतस की गहराई में जो संस्कार है, वहां से विचार स्वयं निकलते हैं, अपने आप वो भावनाएं वहां से प्रकट होती है। हमें कार्य वहां करना है, इतने गहरे तल पर जाकर, और वहां तक पहुंचने की विधि है अशरीरी अवस्था। अशरीरी अवस्था में दो काम हो जाते हैं, एक तो जो पुराना है वो डिलीट होता है और नया उसमें अपने आप भरता है। नया अर्थात वो नया नहीं है, वास्तव में वही अनादि ओरिजिनल स्वरूप है आत्मा का, जो प्रकट होने लगता है। परंतु जो डिलीट होता है वो उसके भीतर में छिपी हुई नेगेटिविटी, आत्माओं के प्रति घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, अपने प्रति घृणा कहीं ना कहीं, अपने प्रति अपराध का भाव है कहीं ना कहीं, सेल्फ गिल्ट। अंग्रेजी में एक शब्द है पुअर मी सिंड्रोम, पुअर मी, PMS, पुअर मी, जिसमें व्यक्ति अपने ऊपर ही दया करते रहते हैं, अरे अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, या फिर हर जो बातें जीवन में होती है हर चीज स्वयं को दोषी मानता है, वाय मी, पुअर मी, इस तरह की। ये भी एक सूक्ष्म में कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, खुद को स्वयं का शिकार करता है, हीन भावना से कहीं ना कहीं ग्रसित है। तो ये जो भाव है इतने सूक्ष्म है, भय है अंदर ही अंदर छिपा हुआ, किसी ना किसी आत्मा के प्रति इतनी निगेटिविटी भरी हुई है, ऊपर से कुछ और है परंतु अंदर से कुछ और। और वो हो सकता है हमारे आसपास के ही है। एक बार सुनाया था खलील गिब्रान की एक कविता है, उस कविता में एक बेटी है और उसकी माँ है, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते, पर दोनों को एक बीमारी है रात में चलने की और बात करने की। एक रात दोनों ही उठ जाती है और बाहर जाती है तो माँ अपने बेटी को गालियां देने लगती है, तू जब से आई सबने मेरे तरफ ध्यान देना बंद कर दिया, और बेटी माँ को गालियां दे रही है बहुत, दोनों एक दूसरे के विरोध में झगड़ा कर रहे हैं। और थोड़ी समय के बाद सुबह हो जाती है और दोनों होश में आ जाती है। होश में आते ही माँ कहती है, बेटी तू यहाँ कैसे आ गई, तुझे तो ठंड लग रही होगी। वो कहती है, माँ तुम यहाँ कैसे आ गई। फिर प्यार करने लगते हैं, है इतना नजदीक का संबंध पर अंदर ही अंदर नफरत भरी है। कहाँ है ये और कहाँ से निकल रहा है ये? जन्म जन्म आत्मा ने जो भोगा वो तो भोगा, पर इस जीवन में भी ज्ञान से पहले भी बहुत सारी बातें हुई है, ज्ञान के बाद भी बहुत सारी बातें हुई है, हो रही है, और वो कहीं ना कहीं चेतना में अपना प्रभाव डाल रही है। मुरली में बाबा ने कहा वाइब्रेशंस के रूप में रह जाता है, ऊपर ऊपर से तो निकाल दिया, व्यर्थ बोल व्यर्थ चलन वो तो सब हट गया, परंतु उल्टा देखना सुनना बीती बातें वो तो मिटा दी है, परंतु वाइब्रेशंस के रूप में अब भी है। हमें सारा पुरुषार्थ उस तल पर करना है और वो होगा अशरीरी अवस्था में। जितना जितना ज्यादा से ज्यादा, इसके लिए बाबा कह रहे बार बार स्थिति में स्थित हो जाओ, अतीन्द्रिय सुखमयी अवस्था। जैसे उस स्थिति में हम स्थित होते हैं बहुत कुछ डिलीट होना चालू होता है, हमें पता नहीं चलता डिलीट हो रहा है, पर होगा और होता है, और ये कार्य हर रोज स्वयं को करना है। तो तीन स्टेजेस बाबा ने बताई है। सबसे पहले तो निगेटिव को क्या करना है, पॉजिटिव में परिवर्तन करना है। एक लिस्ट बनाओ कौन कौन सी वो आत्माएं हैं जिनके लिए अब तक भी हम बहुत, हमने जिन जिन को माफी नहीं किया है, उन आत्माओं की लिस्ट जिनके प्रति हमारे मन में सम्मान कम है, उन आत्माओं की लिस्ट जिन्होंने हमें दुख दिया है, शायद इसके लिए हम उनके प्रति एक ग्रज, एक बहुत द्वेष है, अंदर से घृणा है, नफरत है, बदले का भाव है, ये सारे भाव है, उनके प्रति हमें काम करना पड़ेगा। पॉजिटिव, निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो, पॉजिटिव को समाना है, उसके बाद में फिर मिटेगा वो। पावर टू इरेज, पावर टू एकोमोडेट, पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये तीनों ही पावर काम करनी चाहिए, तब कहीं जाके वो स्लेट क्या होगी, क्लीन और क्लियर। फरिश्ता अर्थात क्लीन और क्लियर, ऐसे हमें अपने मन को बनाना है। शुद्धिकरण, आत्म शुद्धिकरण, सारा कार्य इधर करना है, बाहर कुछ भी नहीं है। दूसरा एक महत्वपूर्ण कार्य आज के मुरली में बाबा ने कहा, साधारण कार्य हम करते फिर भी कैसे हो हमारी बोल चाल चलन हाल, सब कुछ कैसा हो, अलौकिक हो। समय की पुकार है, फरिश्ता स्वरूप को प्रकट करना है। स्लोगन क्या है, अब नहीं तो कब नहीं, ब्रह्मा बाप इंतजार कर रहा है, मेरे समान बनो। अचानक से कोई आ जाए तो क्या हो, उसको अलौकिकता नजर आए, अलौकिक फरिश्ता है ये नजर आए, न्यारे और प्यारे है ये नजर आए। सबके सामने हम जो है वो तो है ही है, परंतु जो मैं एकांत में अपने कमरे में है वो हमारा वास्तविक स्वरूप है। हम एकांत में क्या सोच रहे, कौन से संकल्प, कौन सी कल्पनाएं, कौन से भावनाएं हमारे मन में प्रकट होते है, आते हैं, उसकी चेकिंग, इतनी गहरी हमें चेकिंग करनी है अपनी। हमारी जो चेकिंग हो दिन ब दिन, दिन प्रतिदिन गहरी होती जाए। अमृत वेला कर लिया, मुरली सुन ली, मुरली चार बार पढ़ ली, पांच बार पढ़ ली, शाम का योग कर लिया, ट्रैफिक कंट्रोल कर लिया, भोजन बाबा की याद में बनाया और खाया, साधारण सा पुरुषार्थ है। तीव्र अर्थात सब इससे डबल, क्योंकि स्लोगन है अब नहीं तो कब नहीं। तो कोई भी अचानक आके हमको अगर देख ले तो क्या दिखाई दे, अलौकिक फरिश्ते हैं। हो सकता है उस समय हम चिल्लाने ही वाले थे किस पर, किसी ने कुछ ऐसी गलती कर दी, गड़बड़ कर दी, और उसी समय अगर कोई आके देख ले, इमेजिन करो कि ऐसा कुछ हुआ और एकदम से बीच से हमें बाबा दिखाई दे और हम स्वयं को रोक दे, क्योंकि जो बोल निकल जाते हैं वापस नहीं लिया जा सकते। अचानक कोई देख ले, अचानक ऐसी समस्याएं सामना कर रहे हैं, वहां पर भी अलौकिक, लौकिक हालचाल से परे, कुछ भी हो जाए अलौकिकता ना जाए, इस सदी के लिए बाबा ने लक्ष्य दिया है, फरिश्ता स्वरूप प्रकट करो, ये एक बात कही है आज की मुरली में। और एक बहुत नशे वाली बात है, हम सब क्या है, परमात्मा पालना के अधिकारी बच्चे हैं। हमारे दो यादगार है, कौन से यादगार है, एक तो चित्र, हमारे चित्रों से दिव्यता महानताएं नजर आती है। हम कई बार सोचते हैं, बाबा कितनी बार कहते हैं कि तुम ही वो हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, परंतु ये जो भाव है पूर्ण रूप से अभी तक प्रकट नहीं होता है। क्या ये फील होता है कि ये जो जिसकी जिस देवी की पूजा हो रही है वो मैं है, मैं हूं? ऐसा लगता है सबको? केवल थियरी है, या जिस हनुमान की या जिस गणेश की भाइयों के लिए? उसके आगे झुकते हैं, नमन करते हैं लोग, प्रातस्मरणीय वंदनीय अर्चनीय हो जाते हैं वो सारे देवता है। क्या हमें ऐसा लगता है कि हम भी वैसे हैं? कितनी ज्यादा हाई लेवल ऑफ प्यूरिटी की आवश्यकता है जो हमारे वर्तमान, अगर वो भक्त जो झुक रहा है देवी के सामने, अगर उसने देख लिया इस देवी के क्या विचार चल रहे हैं अंदर, और उसे कुछ दिखाई पड़ जाए कि इसके मन में भी वही ईर्ष्या है जो मेरे मन में है, ये सोच रही है मेरे मुझे और भी धन चाहिए, तो वो भक्त वहां रहेगा? यदि कोई हनुमान का भक्त देख ले कि हनुमान अंदर ही अंदर भयभीत है, अंदर ही अंदर सोच रहा है पता नहीं मैं अगर बीमार पड़ जाऊं तो मेरी सेवा करने कोई आएगा या नहीं आएगा, तो भक्त रहेगा वहां पर? अपना उपवास तोड़ देगा ना? कोई गणेश का भक्त है और गणेश जी सोच रहे हैं कितनी सारी टेंशन है, एक जाता है दूसरा विघ्न, ये इसके लिए बीके बने थे? कोर्स कराते समय तो बहन जी ने ये बताया नहीं था कि यहां से हिसाब किताब चालू होंगे, तब तो हम आए थे पीस मैनेज किस लिए आए थे, शांति के लिए आए थे, पर तब पहले दिन तो ये बताया नहीं था कि यहां से हिसाब किताब भी चालू होने वाला है ब्राह्मणों के साथ, सब कुछ निःशुल्क है ऐसा बताया था। इतने सारे पेपर आ जाएंगे, ये तो किसी ने कोई चर्चा ही नहीं की थी उस 7 डेज के कोर्स में। तो जो भी देवी देवताएं हैं या जिनकी पूजा होती है, मंदिर है, उनके मंदिर में कितनी पवित्रता है, क्या हमारे मन में ऐसी पवित्रता है, ऐसा शुद्ध हृदय है? यहां तक कि जो बनावटी देवता है उनके आगे भी नमन करते हैं। किसी सीरियल में कोई कृष्ण बन जाता है, कोई राम बन जाता है, उनके भी कितने भक्त हो जाते हैं। तो नाम और रूप, तो हम भी इस नशे में रहे, हम परमात्म पालना के अधिकारी आत्माएं, अब भी महान है तो भविष्य में भी महान है। फिर बाबा ने वर्ष भर का पोता मेल देखा, दो बातें देखी, एक तो कह दी दो शक्तियों की कमी है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात कही, वो कौन सी? अलबेलापन। उसमें एक महावाक्य है, कौन सा? सब चलता है, 20 बातें बताओ ब्राह्मणों की जो कहते हैं ब्राह्मण, सब चलता है इसमें। कौन कौन सी वो बातें हैं जिसमें ब्राह्मण कहते हैं या हम खुद कहते हैं चलता है इसमें? क्या होता है? थोड़ा बहुत तो चलता है, बाबा कहते हैं, आगे देख लेंगे, बाबा भी कहते हैं कि बाप भी देख लेंगे, बाबा थोड़े सख्त होते हैं। कल की जो अव्यक्त वाणी था उसमें पहली बार इतने सालों में बाबा ने दो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, ऑर्डर माना, ऑर्डर हुक्म, ऐसे शब्द कुछ सालों से नहीं आ रहे, पहले थोड़े आते थे पर अभी इतने समय से नहीं आ रहे। कल की मुरली में ऑर्डर माना, ऑर्डर, रोकने का ऑर्डर मिले तो रुक जाए, कंट्रोल ऑफ माइंड की स्टेज हो। तो वो कौन सी बातें हैं? यहां से चालू करते बहनों की तरफ से, माताओं की तरफ से, जिसमें सभी कहती है ये तो चलता है। बोलो कौन कौन सी वो बातें हैं? कभी कभी अमृत वेला मिस होगा तो क्या हो गया? चलता है, सबका ही तो होता है। एक, सब कोई तो नींद आती है, हमने बड़े बड़ों को नींद करते देखा है। मुरली नहीं पड़ी तो क्या हो गया? इतने सालों से नया तो उसमें है ही नहीं, वही तो बातें हैं। बाप आए हैं, आत्मा समझ के बाप को याद करो, मौत सामने खड़ा है, मौत का बाजार गर्म होने वाला है, देह सहित देह के संबंध को भूल जाओ, दिव्य गुणों को धारण करो, तुम्हें सेवा भी करनी है, तुम्हें बाप का परिचय सबको देना है और लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, दिव्य गुण सारे यहीं पर धारण करने हैं और बाप आए हैं सबको घर ले जाने के लिए, इसके लिए सबको भूलो, इसके अलावा कुछ है क्या उसमें? तो नहीं पढ़ा तो क्या होता है, ये भी चलता है। और नुमा शाम का योग, हम तो योग में ही है, हम दिन रात याद में ही है, अलग से बैठ करके याद करके मेहनत की जरूरत ही नहीं। बाबा ने कहा है सहज योग, और सब चलता है हमें। भोजन तो याद में ही बना रहे हैं, इधर कई कई लोग भोजन बनाते बनाते भी चालू रहता है और कहते हैं हम याद में ही है, और सब चलता है हमें। एकदम सेवा नहीं की तो क्या फर्क पड़ता है, बाकी तो सब कर ही रहे हैं। और बाहर का कुछ थोड़ा कम ही खाते हैं, अभी तो ब्राह्मण नहीं खाते हैं। और अच्छा मशीन, अच्छा हाँ ये है, बिस्किट, चॉकलेट, जूस, आइसक्रीम, चिप्स, और लिस्ट तो बहुत बड़ी हो रही है। और क्या क्या खाते हैं? कहते हैं ये मशीन मेड है, इसे मशीन से बनाया जाता है। काकरा, और क्या, ब्रेड, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चलता है, इसको खाने से कुछ नहीं होता है। भोजन तो इतना सूक्ष्म है, जिसे योगेश्वर की लाइन में आना है उसका भोजन तो संपूर्ण सुपर सात्विक, अतिशय योग युक्त, योगियों के द्वारा बना हुआ या खुद बनाया हुआ ही हो। और क्या चलता है अब भाइयों की तरफ से, क्या चलता है? सब कुछ में क्या चलता है? झूठ बोला तो क्या होता है? युक्ति युक्त है, बाबा ने तो कहा है युक्ति युक्त बोलो। और पानी पूरी। और टाइम वेस्ट थोड़ा बहुत किया तो क्या होता है? यहाँ वहां घूमने गए ज्यादा और टाइम ये सब किया तो क्या फर्क पड़ता है? और इकोनॉमी की बात यहाँ आ सकती है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टाइम, संकल्प, थोड़ा बहुत टीवी देख लिया तो क्या फर्क पड़ता है? थोड़े बहुत सीरियल भी तो अच्छे अच्छे आते हैं, देख लिया तो क्या फर्क पड़ता है? और मोबाइल, वो तो सभी यूज कर रहे हैं, हम भी थोड़ा ज्यादा समय, एक समय था जब कई लोग थे जिन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी, जब मोबाइल नए नए निकले थे, कि कुछ भी हो जाए हम मोबाइल नहीं यूज करेंगे, ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा कर ली थी, परंतु आज कुछ और हो गया है। तो सभी तो कर रहे हैं, हमने किया तो क्या हुआ? और मनमत थोड़ा स्थूल, औरों का परचिंतन, पर दर्शन, सभी सोचते रहते, सभी चर्चा करते रहते हैं, ऐसी कुछ सारी मंडलियां भी बनी हुई है, मिलकर कौन क्या कर रहा है इसकी चर्चा करते हैं, किसने क्या किया, कौन क्या कर रहा है, कौन कहां है, किसके जीवन में क्या हो रहा है, तो ये सारी बातें सब चलता है वाली, ये केयरलेसनेस। बाबा ने कहा अगर अलबेलापन है तो पुरुषार्थ तीव्र नहीं होगा, अलबेलापन है तो पास्थित ऑनर नहीं होंगे, अलबेलापन है तो चलेंगे पर उड़ नहीं सकेंगे, अलबेलापन है तो परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। कहां मेरे अंदर अलबेलापन है उसे समाप्त करना, ये दूसरा होमवर्क है, प्लेट को क्लीन करना, अलबेलेपन को समाप्त करना, एक सेकंड में ओम शांति स्वरूप में स्थित होना, ये भी एक होमवर्क है, मनमाना भाव की स्थिति में स्थित होना, सुखमयी अवस्था में स्थित होना, ये भी एक होमवर्क है, उसके याद को समा लेना अपने अंदर, वो कैसे समाए वो भी एक होमवर्क है। कितनी सारी बातें बाबा ने कही है जो हमको दी है करने के लिए। न्यूज चलता है, ये भी एक है न्यूज। और गेम्स, अगर कोई कहते हैं हम क्रिकेट देखते हैं, इसमें क्या खराबी है? बाबा भी खेलते थे, सारे उत्तर ब्राह्मणों के सारे उत्तर रॉयल होते हैं। खेलने में नहीं, हम टीवी पर जो चलता है और उसमें जो एक्साइटमेंट होता है, कौन जीतेगा, सोचो अगर उसी समय हमारी मृत्यु हो जाए, अंतमति सो गति, किस अवस्था में हम शरीर छोड़ेंगे। 10 लोग बैठकर टीवी देख रहे, उनके चेहरे देखना, क्या आवेश रहता है, एंग्जाइटी रहती है, एक जोश रहता है, क्या वो योग युक्त अवस्था है। खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, वो दूसरी बात है, उसमें फिर और भी दूसरे भाव प्रकट हो सकते हैं। वो देश ना जीते, हमारा देश जीते, फिर हमारा देश और तुम्हारा देश, हम हैं विश्व कल्याणकारी, तो वो भाव तो वहां बिल्कुल विपरीत भाव वहां खड़ा हो जाता है। इसके लिए मेरा शहर तेरा शहर, तेरा सेंटर मेरा सेंटर, तेरा मेरा में हम विभाजित हो जाते, हम अपने आप को बेहद में स्थित करना चाहते हैं, और ये क्या। इसके लिए ये जो चलता है, इसकी भी अपनी अपनी एक लिस्ट बनाओ, जो हमने सोच रखा है ये सब चलता है, ये सब तो होता ही है। एक 15 नवंबर 2003 की मुरली पवित्रता के ऊपर बाबा ने कहा है, उसमें कई लोग सोचते हैं ये तो थोड़ा होता है, ये तो थोड़ा चलता है, थोड़ा नहीं बहुत है। क्या कहा, वो पवित्रता की बातें कर रहे थे बाबा, थोड़ा नहीं बहुत है। ऐसा शायद हो सकता है जो हमने मान लिया ये सब होता ही है, ये सब करते ही है, परंतु वैसा नहीं है। शायद हमें श्रीमत की गहराई पता नहीं, श्रीमत क्या है, मनमत क्या है और परमत क्या है, इसको ही हम छाट नहीं सक रहे। श्रीमत मनमत को ही श्रीमत समझ रहे, परमत को ही श्रीमत समझ रहे। श्रीमत तो बहुत ऊंची चीज है, श्रीमत पालना है, इसका हमें नशा है, पर क्या हम उस श्रीमत को जानते हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट एंड एक्सप्लोर श्रीमत, इस श्रीमत को एक्सप्लोर करना, ये है क्या। बाबा ने कहा मैंने हर चीज के लिए तुम्हें श्रीमत दे रखी है, पर क्या मुझे पता है, शायद नहीं, इसलिए तो ये गलतियां हो रही है। तो कल की मुरली जो चली, जिन्होंने नहीं पढ़ी उसे पढ़े, और आज ही पढ़े सोने से पहले, जिन्होंने नहीं पढ़ी, उसके सिवा सोना नहीं है बिल्कुल। जिन्होंने नहीं पढ़ी, जिन्होंने पढ़ी वो उसे रिवाइज करे, जिन्होंने उसे रिवाइज किया उसे दोबारा रिवाइज करे कि इसमें मैंने आज क्या क्या किया, जो सुबह कल रात में बाबा ने बोला था, आज दिन भर कैसा रहा। अगर नहीं हो पाया तो फिर से संकल्प करना है कल के लिए। ऐसे चारों ओर के महान आत्माओं को, ऐसे बाप समान आत्माओं को, ऐसे एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे बाप दादा को स्नेह का रिटर्न देने वाले महावीर आत्माओं को, ऐसे परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, ऐसे दृढ़ निश्चय से प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।